مختلف ریجن سے پلیز بنتے تھے, کوئٹہ کے, پشاور کے.
ڈائجسٹ کے لکھنے والے ہماری ڈراما انڈسٹری میں آئے,
12 فلوپ ہوتے ہیں اور 2 سپر ہٹ ہوتے ہیں, تو ایک میرا بھی چلے.
لاہور میں جو سینما ختم ہوا ہے نا, وہ لاہور کے اپنے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ نان پروفیشنل,
جس کو 4-5 لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو کوئی الگ سے چیز ہے.
السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کا میزبان حارث خلیق پوڈ کاسٹ کے سلسلے کی ایک اور کڑی اور ایک اہم کڑی. اور پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے ادب, فنون لطیفہ, ثقافت, سیاسیات, سماجیات, ماحولیات, ان سب سے متعلق اور دیگر کھیل کے شعبے, ان سب سے متعلق ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے 75 سالہ جشن آزادی کے سلسلے میں ہم ایک جائزہ بھی لیں, ریکیپ کریں کہ پچھلے 75 برس میں کیا ہوا ہے اور کیا عروج و زوال ہم نے دیکھا ہے, کیا زیر و بم رہا ہے ہر شعبے میں, اور ساتھ ساتھ ہم عصر حاضر پر بھی ایک نگاہ ڈالیں. اور بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ آج دو نہایت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اپنے 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 تو کیا ایک ہی شعبہ ہے, لیکن اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا بہت ان کا ظاہر ہے کہ کنٹریبیوشن مختلف قسم کا رہا ہے. یہ موونگ امیجز فلم اور ٹیلی ویژن سے متعلق کڑی ہے ہماری پوڈ کاسٹ کی اور قسط ہے. اور اس میں جو میرے ساتھ موجود ہیں, جن کا میں نے ذکر کیا کہ نہایت معزز اور بڑے معتبر نام اس شعبے کے, بیگل صاحبہ, بہت بہت خوش آمدید
جی.
اور بیگل پاکستان کی اس وقت ایک سرکردہ چوٹی کی پلے رائٹ ہیں, ڈرامہ نویس ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی ان کے آپ نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ یہ کہانی کار ہیں بہت اچھی, جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ اردو کی ایک نہایت صاحب طرز افسانہ نگار ہیں. اور کتاب چونکہ ابھی تک ان کی منظر عام پہ نہیں آئی, تو اس پہ گفتگو ہم زیادہ نہیں کریں گے, اور آج ان کو جس حوالے سے زحمت دی ہے وہ حوالہ بھی فلم اور ٹیلی ویژن کا ہے, تو گفتگو ان سے اسی سلسلے میں ہوگی. اور ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہمارے ساتھ فصیح باری خان موجود ہیں, اور فصیح باری خان نے ایک سنسنی پھیلا دی تھی جب انہوں نے ڈرامے لکھنے اور ڈائریکٹ کرنے شروع کیے, اور پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن پہ, خاص طور پر جو انٹرٹینمنٹ نجی ٹیلی ویژن تھا کیا ہے, اب ذرا اس کا مزاج بدل گیا ہے, جس پہ گفتگو کریں گے فصیح بھی اور بیگل بھی. تو انہوں نے اس کے علاوہ ادب سے, علم سے, فلم سے, اور فلم کی تنقید سے, اور فلم کی تاریخ سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ادیب بھی ہیں, یعنی لکھنے والے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے فلم اور ٹیلی ویژن کی, اس کے ماہرین کے طور پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کے جو شخصیت کے دیگر پہلو ہیں جن سے میں واقف ہوں, ان پہ میں آج گفتگو نہیں کروں گا, ویسے بھی وہ سب کے علم میں نہیں آنے چاہیے فصیح, جو شخصیت کے
بالکل نہیں آنے چاہیے,
وہی آنے چاہیے.
اچھا, وہی تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر بیگل آپ اجازت دیں
جی,
تو میں ذرا فصیح سے پوچھوں کہ یہ ٹی وی کے لیے آج کل کچھ لکھ یا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر رہے جی فصیح؟
میں کیوں نہیں لکھ رہا ٹی وی کے لیے؟ شاید میں ٹی وی سے بہت مایوس ہو چکا ہوں, شاید ٹی وی پہ جو کانٹینٹ جس طرح کا چل رہا ہے, مطلب جس زمانے میں میں نے لکھنا شروع کیا, تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں, آج کے دور سے اگر میں کمپیئر کرتا ہوں, سمجھنے والے لوگ تھے, اقبال انصاری جیسے لوگ تھے, دوسرے لوگ تھے جو اسٹرپ ڈپارٹمنٹ میں تھے, ڈاکٹر انور سجاد ہوا کرتے تھے, دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ وہ لوگ آ گئے ہیں, وہ لوگ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے کہ جو وہ جگہیں ڈیزرو نہیں کرتے. میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, اسی لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا لوگ بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں, خفا رہتے ہیں, لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسی جگہوں پہ ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے کہ جہاں ان کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ بیٹھتے, کیونکہ اس وقت جو ڈرامہ چل رہا ہے نا, وہ ڈرامہ ان کو وہ چاہیے کہ جس کا مطلب کسی بھی طرح ایک باذوق آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کا اس سے مطلب, انہوں نے ڈرامے کو ایسی چیز بنا دی ہے. پہلے ڈرامہ تھا, ہم کہتے تھے جو ہمارا پرانا ڈرامہ جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں, بات یہ تھی کہ اس دور میں ڈرامہ وہ کہانیاں لکھی جا رہی تھیں, وہ ڈرامہ لکھا جا رہا تھا کہ جو ہر سطح پہ آدمی کو متاثر کرتا تھا, مطلب اس کو ایک باذوق آدمی بھی دیکھ سکتا تھا, اس کو وہ لوگ بھی دیکھ سکتے تھے کہ جن کی اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن ہر کوئی جو تھا وہ اس ڈرامے سے وہ کرتا تھا, کیونکہ اس کا
تو فصیح تبدیلی کب آئی ہے؟
ये तब्दीली देखिए धीरे धीरे आई है, वो जो हम कहते हैं ना तबाही अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, एकदम से तो नहीं होता अब बम आपके सर पे कोई फोड़ देता है, वो धीरे धीरे हो रहा था, वो एक वो जो कहते हैं ना एक तूफान का पेशकहमा थी ये सारी चीजें। जब हमने देखा कि शुरू में ये हुआ कि हमने
अंदाज़न दौर कौन सा है,
अंदाज़न दौर ये मैं आपको एक बताऊं, जो सारी बर्बादी आई है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं और इस बात पे हमेशा बड़ी लोगों की सुनता हूं, जब से डाइजेस्ट के लिखने वाले हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आए, क्योंकि डाइजेस्ट के लिखने वाले जो होते हैं ना उनके उसमें क्या होता है अल्फाज
जो उर्दू में कहानियों के डाइजेस्ट छपते हैं उनके लिखने वालों ने प्ले राइट की हैसियत से हमारे जो एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं जिन पे ड्रामे दिखाए जाते हैं प्लेस दिखाए जाते हैं उन पे लिखना शुरू कर दिया।
बजाय इसके होता है कि हम टीवी के वो राइटर्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्क्रीन प्ले का पता होता है, जिनको कंटेंट का पता होता, हम सीधे सीधे वो जो कहानियां नहीं होती कजन्स मैरिजेस और फलाना ढिमाका मोहब्बतों की उल्टी
सी, हाँ, वो लव ट्रायंगल भी मैंने देखा कि तीन कजन्स के दरमियान है आजकल।
जी जी,
और पहले कम से कम ये वैरायटी तो थी कि अगर एक कोई कजन शामिल है तो एक कोई बाहर का लड़का या लड़की भी हो सकता था, अब वो तीनों पूरे खानदान में। मैं जरा बीगुल की तरफ आऊं अगर आप इजाजत दें। बीगुल आप तो मैं समझता हूं कि आप इनसे इत्तेफाक करती हैं, चूंकि आप तो डरसी जाती है सिला से लेकर रकीब से और फिर आजकल भी आप बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो फसी से किस हद तक आप इत्तेफाक करती हैं, और अगर इत्तेफाक करती हैं तो आपके चूंकि एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के प्लेज हैं तो उनकी गुंजाइश कैसे निकलती है इस सूरत हाल में?
देखिए बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जो फसी बात कह रहे हैं, और उसमें एक ये भी सिलसिला है कि फसी का से बहुत मैं इंस्पायर्ड हूँ, जाहिर है फसी मुझसे उम्र में के अलावा वैसे भी सीनियर है ना।
अब ये कैमरा होना चाहिए था इस वक्त,
इसमें आपको मेरे तासुरात भी कैप्चर करने चाहिए थे।
तो फसी की चीज़ें देख के बहुत इंस्पिरेशन होती थी, अगर और मैंने इन्हीं को भेजी थी अपनी पहली स्क्रिप्ट भी, इतफाक से ये हम टेलीविजन में होते थे उस वक्त कंटेंट को देख रहे थे, अच्छा दौर था वो, बस वो जाने वाला था, वो आखिरी चंद सांसें थी अच्छे दौर की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक पूरी स्टोरी टेलिंग की शिफ्ट आपको नज़र आती है ना जब आप एक डाइजेस्ट राइटर के ऊपर जाते हैं, वो एक डाइजेस्ट के लिए लिखी हुई चीज़ होती है, मगर वो पॉपुलर चीज़ थी जैसे अभी फसी ने कहा, तो वो एक बहुत पॉपुलर चीज़ इस अंदाज से थी कि एक औरत जो घर की औरत जो आपकी मेजर ऑडियंस है वो खाना वाना बना रही है, हंडिया भून रही है, साथ उसके हाथ में डाइजेस्ट है उसको पढ़ रही है, वो डाइजेस्ट उसने अब रख दिया, वो टेलीविजन पे देख रही है,
वही डाइजेस्ट ऑफ टेलीविजन पे
वो रेप्लिकेट हो रहा है वहां पर।
तो आपके लिए स्पेस कैसे बनी फिर?
मेरे लिए बहुत मुश्किल से स्पेस बनी, लेकिन यही एक शायद खुशाइंद बात है या एक गुंजाइश जो बाकी है कि अभी तक स्पेस है, 10 साल लगे स्पेस बनाने में, 10 ईयर्स की वो एक जो स्ट्रगल होती है जिसमें बहुत फंसी इस बात के गवाह हैं कि बहुत रिजेक्शंस, बहुत डिस्करेजमेंट, ये बहुत बहुत कुछ कहा गया, विक्टिमाइजेशन की हद तक कि आप लिखना छोड़ दें, आप तो जाके किताब लिखिए, आप कैसी बात करें, लोग ये देखना ही नहीं चाहते, आप बहुत डार्क लिखती हैं, बहुत आर्टसी लिखती हैं, ये बातें बहुत सुनी हमने। लेकिन बहरहाल वो स्पेस क्रिएट हुई उसमें, क्रेडिट मुझे लगता है एक तो ये था कि मैं बहुत अड़ी भी रही कि जी मुझे यही चीज़ लिखनी आती है, मुझे डाइजेस्ट लिखना नहीं आता, तो आप इसकी जब आप 15 ड्रामे बना रहे हैं जिसमें से 12 फ्लॉप होते हैं और 2 सुपरहिट होते हैं, तो एक मेरा भी चले हो जाएगा फ्लॉप, तो आपका क्या जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। तो उस बात पर उन्होंने शायद मुझे कहीं गुंजाइश दी, और क्योंकि वो क्रिटिकली थोड़े अप्रिशिएट हुए एक नीश ऑडियंस के अंदर, तो वहाँ पर एक फेस सेविंग शायद चैनल्स को अपनी मिली कि हम ये एक आर्काइव कर सकते हैं, यू नो, जस्ट टू शो
कोई अच्छी चीज बना के रख ली,
जस्ट टू शो केस इट। हाँ, तो उनका कोई और कोई खास मकसद,
मतलब गजल में कोई शेर, एक शेर अच्छा भी हो जाए
तो चलो एक हो जाए,
उस पे दाद ना मिले,
और जिसको 4-5 लोग कह दें कि अच्छा जी ये तो कोई अलग से चीज है, तो उसमें वो मेरी भी लॉटरी लग गई कि ठीक है उस फेस सेविंग के ऊपर एक मेरी भी चीज है बनती है, मैं लिखती
हूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे बिगुल ये पूछूं कि पाकिस्तान में जो टेलीविजन ड्रामा है उसका जो पाइनियर है, जो जिन्होंने शुरू किया वो तो पाकिस्तान टेलीविजन है
जी।
पाकिस्तान टेलीविजन के जो 70 की दहाई के और 80 की दहाई के ड्रामे हैं, क्योंकि मिड 60s में तो वो शुरू ही हुआ, उनमें और जो उस देखिए जो मुझे आप फसी की बात से और आपकी बात से समझ में आया है वो ये है कि तीन अद्वार के तौर पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, माजरत के साथ पाकिस्तान के ड्रामे को, टेलीवाइज ड्रामे को। एक दौर जो है वो 70 और 80 की दहाई है, फिर 70, 80, 90 कर लीजिए, उसके बाद सन 2000 के बाद से नई सदी में एक 10 साला दौर है जिसमें एक अच्छा कंटेंट है और पाकिस्तानी ड्रामा एक तरह से रेसरेक्ट होता है। यानी 70 और 80 की दहाई के बाद 90 में ज़रा अगर पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा कमज़ोर हुआ तो सन 2000 के बाद एक रेसरेक्शन है पाकिस्तान के ड्रामे की, सन 2000 से लेके 2010 तक, आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ सामईन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि एक तीसरा दौर शुरू हुआ जिसमें डाइजेस्टों के लिखने वाले जिनके आपने कुछ के नाम भी लिए और वो ड्रामे पे हावी हो गए। तो ये इन तीन अदवार में हमने दो को तो समझ लिया आपसे जो इस वक्त के अदवार हैं यानी 21वीं सदी के। अब अगर जो पाकिस्तान टेलीविज़न का प्ले है उसको आप कैसे देखती हैं, एक शू स्ट्रिंग बजट पे बिल्कुल थोड़े से पैसों में बना हुआ और उसमें बड़े बड़े लिखने वाले, उसमें बानो कुदसिया भी लिख रही हैं और हसीना मोइन भी लिख रही हैं और भी बेशुमार लोग, अशफाक अहमद साहब से लेके और बहुत से यानी क्वेटा और पेशावर के सेंटर्स से भी जो कि छोटे सेंटर्स समझे जाते थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, वहाँ से भी क्वेटा से धुआं मिसाल के तौर पर प्रोड्यूस हुआ। तो उस दौर को आप कैसे देखती हैं?
देखिए, और उसमें एक ये बात भी थी क्योंकि रीजनल, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मुख्तलिफ रीजन से प्लेस बनते थे क्वेटा के, पेशावर के, और आपको स्क्रीन चेंज होती हुई नज़र आती थी तो आपका वो कल्चर शेयर वहाँ पर होता था और उनकी अपनी एक स्टोरी टेलिंग थी, जैसे क्वेटा की खास तौर पर थी, पेशावर की बहुत हमें नज़र आती थी कहानियाँ कहीं भी, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हमने रीजनल, पता नहीं उसको रीजनल लैंग्वेजेस कहना चाहिए कि नेशनल लैंग्वेजेस ही कहना चाहिए जी। आसानी
सिंधी में आप देखें ना, सिंधी में आप देखें कि सिंधी में क्या बड़े बड़े ड्रामे,
बहुत बड़े बड़े ड्रामे बने थे और पश्तो में बहुत अच्छा काम होता था और हम तक वो पहुंचता था और एक कनेक्शन था जो हमारे अंदर एक एस्टैब्लिश होता था, वो तो कहीं दफन हो गया।
और आपको यहाँ मैं जिक्र करूँ, जब इन ड्रामों का की बात हो रही है, अलीबाबा का एक ड्रामा था दुंगी मांझो दरिया जो इन्होंने किया था कश्तियों पे, जो ये जरीना बलोच ने उसमें लीड रोल किया था, नूर मोहम्मद लाशारी थे। आप सोचें इस तरह के ड्रामे के, इसको जर्मनी का एक फेस्टिवल हुआ था उसमें बेस्ट प्ले का उसको अवार्ड उन्होंने दिया था। वो पूरा उस दौर में जब इतने नामसाइद हालात थे, सोचे वो पूरा आउटडोर में उन्होंने शूट किया।
80 की दहाई
नहीं, ये 70s अर्ली 70s की बात,
और ये सिंधी का प्ले है,
ये सिंधी का प्ले था। इसको अली बाबा ने, और मैं खास तौर पे अली बाबा का नाम इधर कोट करूंगा, हमारे क्या होता है, हम जब सिंधी ड्रामे के जिक्र करते हैं हमारे पास दो नाम होते हैं, नूरुलहुदा शाह कहते हैं या अब्दुल कादिर जुनेजो कहते हैं, क्योंकि अली बाबा का काम मैंने बहुत देखा। उनका एक सीरियल था सिंधी में जिंदगी ओलड़ा के नाम से, क्या खूबसूरत, मतलब वो मर्द और औरत की जो एक साइकी होती है, उस किरदार को जो जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया था, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन, क्योंकि उन्होंने, मैं कहता हूं, उन्होंने वो काम किया, वो इतने अंडररेटेड हमेशा रहे, लेकिन मैं कहता हूं वो आज के बड़े लिखने वालों में, मैं कहता हूं अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं इनको कहूंगा कि वो सर फहरिस्त हैं।
एक शिफ्ट भी है, देखिए एक शिफ्ट ये है कि आपका कंज्यूमर या आपका व्यूअर अर्बन है, ठीक है, वो कहानियां जो रूरल कहानियां होती थी या जो आम इस तरह की कहानियां होती थी वो तो खत्म हो गई। इन्होंने बनाना शुरू किया, एक खास ऑडियंस है जिसके लिए ये ड्रामा। अब मज़े की बात यह है कि जिन ड्रामों से हमें नज़रियाती इख्तलाफ मुझे और फसी को हो सकता है, वो बड़े पॉपुलर प्लेस हैं। अब पॉपुलर का मतलब है वो देखे जाते हैं, सराहे जाते हैं, लोगों ने देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि जी लोगों की पसंद को आपने बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया या आपने लोगों की सोच को बदल दिया है। अब लोग पहले तो अच्छी चीज़ देखते थे, अब लोगों को आदत हो गई है, कुछ भी कह दीजिए, मगर एक हार्डकोर ट्रूथ ये है कि जो चीज़ बन रही है वो देखी जा रही है। आपकी ऑडियंस कहाँ है आप उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, ड्रामा लिखने वाले और बनाने वाले की तरफ आप बात करते हैं, मगर जो देख रहा है वो भी तो ये देखना चाहता है ना। मेरे और फसी के प्ले, फसी तो फिर फसी इज़ अ वेरी स्मार्ट राइटर इन अ वे कि ये एक अवामी बात कहते हैं कि मैं तो अपने उसमें ही फंस जाती हूँ, मतलब मैं इस हद तक मेरा स्ट्रेच नहीं है जो इनके पास खासियत है कि है, तो इनका प्ले बहुत दूर तक पहुँचता है। अब मैं अगर एक नीश के लिए लिख रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ कि मुझे फीडबैक भी एक नीश से ही आएगा. मैं जब एक मैसेज को कैटर ही नहीं करी तो मेरा भी तो एक कसूर है ना, कि मैं तो मैसेज को एड्रेस ही नहीं करी.
नहीं, ये मेरा ख्याल है कसूर की तो इसमें कोई बात नहीं है. मेरा तो हर आर्ट में ऐसा होता है कि हर एक को तो हर चीज़ नहीं पसंद आती, लेकिन फसी ने, मैं समझता हूँ कि ये हवाला देना ज़रूरी है कि फसी ने जैसे कराची के मोहल्लों के किरदारों को जिंदा कर दिया, आपने भी अपने प्लेज में रकीब से का मिसाल के तौर पर जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मुझे नहीं लगता नीश का. मेरा ख्याल है कमर्शियल जो लोग हैं हमारे, वो भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी भी कुछ सोच कोई बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल नहीं है. मतलब आप एक नीश क्रिएट भी तो करते हैं ना, आप एक बात को आगे भी बढ़ाते हैं. इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाने से मुझे ख्याल आया कि हम बात को ज़रा और आगे बढ़ाएं, आपको मुस्तकबिल बीगल क्या नज़र आता है कि प्लेस का, कि ये जो नीशेज ही रहेंगी या कभी कोई आला ज़ौक के, जैसे फसी कह रहे थे कि जिनका ज़ौक बुलंद है या जिनकी एक ज़्यादा गहराई से और तहदारी से चीज़ों को देख और समझ सकते हैं, तो क्या कभी ये चीज़ें मेन स्ट्रीम हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी?
देखिए, टेलीविज़न का तो मुस्तकबिल वैसे ही पूरी दुनिया में तारीख है ना. मतलब एक तो वैसे ही ये कोई इतना हाईफाई मीडियम नहीं था, और अब तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं तो लोगों का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि कौन ये बैठकर अब हम अर्तुगरुल गाजी देखकर अपनी अगर हम सो कॉल्ड अपनी रिलीजियस हिस्ट्री को करेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है.
तुर्कों की तारीख है,
जी तुर्कों की तारीख है या किसी की भी तारीख है, उससे हमारी इंस्पायर होके
हलीमा बाजी पे अपनी अजारा दारी कायम कर रहे हैं,
हम बहुत अजारा दारी कायम कर रहे हैं कि उनके कितने उनके पर्दे वर्दे पर. तो उसमें जो मसाइल है उससे तो हमारी न्यू जनरेशन कुछ नहीं सीख रही. इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या आज के बच्चे या यंगस्टर्स हमारे टेलीविज़न की तरह वापस आएँ तो हम बहुत बेवकूफ़ हैं. हमें नहीं आएंगे. मैं ख़ुद भी नहीं आना चाहूँगी अगर मेरे पास कोई चॉइस है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है. मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ जो पूरी दुनिया में बन रहा है, मेरी मर्ज़ी का बन रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ, जिसको अप्रिशिएट होता मैं देख रही हूँ, तो मैं टेलीविज़न क्यों देखूँगी? तो ये बहुत दख़्यानूसी सी बात हो गई कि जी टेलीविज़न अब आपका फ्यूचर क्या है. टेलीविज़न का कोई फ्यूचर नहीं है. लेकिन हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जैसा भी ये मीडियम है, जिसको जैसा भी गिरदानी, बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि हमारे बहुत बड़ी रीच है जिसके पास टेलीविज़न मौजूद है घर में, और वो टेलीविज़न देखते हैं.
उस पे तो बिजली के बिल में टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न को पैसे भी देते हैं,
वो भी देते हैं. और हमारा एक कल्चर है ड्रामा देखने का जो कि राइज है, क्योंकि हम सिनेमा गोज तो रहे नहीं, सिनेमा इंडस्ट्री तो हमारी रही नहीं.
भाई बहुत अच्छा किया आपने,
तो हम सिनेमा की बात
नहीं, अब सिनेमा की बात शुरू करें. उसमें फसी जो है, आपको पता है कि फिल्म की तारीख और तनकीद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं. जरा कुछ बताइए कि 1948 में पहली फिल्म गालिबन बनी,
तेरी याद बनी थी,
तेरी याद.
अच्छा वो, अच्छा तेरी
उसके
याद
बाद बाली बनी पंजाबी में, बाली जो रिलीज नहीं हुई.
जी जी बेली बनी, बेली, जो सादत हसन मंटो ने, जिसके और सादत साहब बताते हैं, सादत साहब के उन्होंने खुद वो कलम बंद किया है कि जब वो देखने गए तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों को बुरी लगी वो फिल्म, और लोगों ने सीटें फाड़नी शुरू कर दी, फिर किसी ने जूता फेंका कहीं से तो वो आके लगा.
रिलीज नहीं हुई ना बेली?
नहीं, बेली लगी थी.
सबसे पहले
लगी थी तेरी याद, पाकिस्तान की जो पहली फिल्म कही जाती है, जबकि वो कहते हैं कि वो पहली फिल्म इस मतलब एक रिकॉर्ड की हद तक है, क्योंकि वो पहले से बन रही थी. जैसे आपको पता है लाहौर की इंडस्ट्री थी,
तो लाहौर भी तो, और रावलपिंडी और कराची भी तो पहले से ही थे ना.
जी जी,
हमने
जी,
तो तारीख ही 1947 में समझा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद 1947
शाहिदा को कहा जाता है कि जो शाहिदा फिल्म थी, शाहिदा फिल्म के बारे में कहा जाता है कि वो थी जो पूरी वहीं लाहौर में, मतलब पार्टीशन के बाद वो ही. तो इसी तरह हुआ कि उस ज़माने में जो लोग आते गए, अजमेरी साहब आए या लुकमान साहब आए, और ये जितने लोग थे, मसूद परवेज़ साहब आए, मसूद परवेज़ ने, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, इन लोगों ने जो बाद में इनका इश्तराक चला, तो ये सब ये लोग थे जो इंडिया से आते गए. और मुंशी दल साहब थे जिन्होंने फिल्में बनाई काफ़ी, तो ये एक पूरी एक लॉट थी जो इंडिया से आई और उन्होंने यहाँ अपने कदम जमाने
की. बहुत से लोग यहाँ के भी थे जो उस वक्त बॉम्बे में थे.
जी जी, बहुत सारे, जैसे लुकमान साहब भी, लुकमान साहब बना चुके थे, लुकमान साहब कर चुके थे काम, मसूद परवेज काम कर चुके थे, फिर हमारे जो DOP थे रजा मीर साहब कर चुके थे. तो मतलब एक लॉट थी जो पूरी आई पाकिस्तान, और जो हालात उस वक्त इतने ख़राब हालात थे, क्योंकि इनके जो स्टूडियोज अलॉट किए थे वो जले हुए थे, ख़राब थे, लेकिन वो धीरे धीरे ये हुआ कि उस वक्त इंडस्ट्री की एक बुनियाद बनती गई.
लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था?
मशरकी पाकिस्तान में बंगाली मूवीज बननी शुरू हो गई थी वहाँ 50 की दहाई में बननी शुरू हुई, वहाँ थोड़ा सा बाद में, मतलब ये जैसे हमारे 47 के बाद ही शुरू हो गई, वहाँ 50 के बाद शुरू हुई। और उन्होंने जो, मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें जो 25 साल हैं जो उन्होंने हमारे साथ गुजारे, हम क्यों उसको इग्नोर करते हैं। हम जब बात करते हैं कि जी लॉलीवुड, तो हम किस हैसियत से लॉलीवुड कहते हैं, क्योंकि उस पर तो 25 साल जिस, और मतलब देखा जाए तो उनकी कामयाबियां हमसे ज़्यादा थी, उनका सिनेमा हमसे ज़्यादा मीनिंगफुल था, क्योंकि वहाँ आप देखिए खान अताउर रहमान जैसे लोग काम कर रहे थे, और बल्कि कारदार साहब ने जो फिल्म बनाई अपना सोए नदिया जागे पानी, कारदार साहब ने बनाई, क्योंकि उन्होंने वो सारे तमर बरन जो उन्होंने म्यूजिशियन थे उन्होंने उनसे म्यूजिक लिया, और फिर उस फिल्म ने बाहर आपने देखें कि कितने अवार्ड्स लिए उस फिल्म ने, फिर उसके बाद
म्यूजिक पे सारा
म्यूजिक पे। फिर एक जो बहुत बड़ा नाम आता है ना जो मुझे इस पाकिस्तान का वो लगता है, वो खान अताउर रहमान का है। उन्होंने मतलब वो बहुत अच्छे कंपोजर भी थे, वो राइटर भी थे, वो शायर भी थे, और उन्होंने फिल्में भी बनाई उन्होंने, तो उनकी सोए नदिया जागे पानी उनकी फिल्म को बहुत ज्यादा वो किया गया। फिर उन्होंने एक बनाई थी नवाब सिराजुद्दौला, जिसके बारे में मतलब वो फिल्म अगर आप देखें, वो कहते हैं वो इंतहाई कम बजट में बनी थी, उसमें एक काबोरी हीरोइन थी उसकी, और उसमें जो गाने थे उसमें जो मतलब जो म्यूजिक था उस फिल्म का खान अताउर रहमान साहब ने खुद दिया था, वो इतना डेप्थ वाला था कि आपको लगता नहीं था कि ये इतने कम बजट की फिल्म होगी।
अच्छा, ये बताएंगे वहां फिर उर्दू फिल्में भी बननी शुरू हो गई।
जी, उर्दू फिल्में, जी ये मैं आपको बता रहा
हूं, सिराजुद्दौला उर्दू में बनी,
सिराजुद्दौला उर्दू में बनी, सोए नदिया जागे पानी, फिर एहतिशाम साहब आए, मुस्तफीज आए, बहुत डायरेक्टर आए, फिर म्यूजिक डायरेक्टर आप देखिए कि सुबुल दास, जिनको मैं कहता हूँ, मतलब मुझे जो अगर मुझे कोई कहता है ना कि जी फला रॉबिन घोष भी नो डाउट बहुत मेलोडियस है, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है ना कि जी सबसे मेलोडियस कौन है, तो मुझे
सुबुल दास,
क्योंकि उनके आप देखिए ना ईंधन फिल्म में जो उनकी एक नज्म उन्होंने वो बेकल रात बिताई बेचैन दिन गुजारा, वो रुजदी साहब ने जो गाई, तो सुबुल दास, और मतलब
अहमद रुजदी साहब से मुझे याद आ गया,
जी जी,
कि जरा सा उस जमाने के कुछ फनकारों पे भी बात करें। बिल्कुल, आपका पसंदीदा एक्टर और पसंदीदा खातून एक्टर, अब तो एक्ट्रेस कहना गलत समझा जाता है, तो मर्द एक्टर और खातून एक्टर आपके कौन हैं?
अभी
नहीं, अभी को छोड़ दें आप, पुराना बचपन के
अपने दौर की बताए ना,
अभी की बात है। अब मैं सोच के बताती हूँ कि कौन है पुराने वक्त, मुझे तो कुछ याद नहीं आता।
फिल्मी अदाकारों के, अभिनेत्रों और अभिनेत्राओं के, अभिनेत्रियों के, जी
सुल्तान राही साहब,
अच्छा
बहुत,
मतलब क्रश है आपका,
क्रश है मेरा
सुल्तान राही क्रश। अच्छा, और खातून कोई है जो आपकी को पसंद हो?
देखिए बहुत सारी खवातीन हैं, जिस कौन है जो मुझे संगीता भी बहुत पसंद है।
संगीता
संगीता
आपको बहुत हवाले से पसंद है, एक सुल्तान राही आपका क्रश है बचपन का। जी फसी, आपके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन?
देखिए मैं,
क्योंकि आपने बहुत से डायरेक्टर्स के नाम लिए और कंपोजर्स के नाम लिए जो बहुत अहम है,
मैं आपको
जो पर्दे सीमी पे नमूदार होते हैं वो तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस।
देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे जो मतलब मुझे लगता है ना पाकिस्तान की जो हीरोइंस जिन्होंने काम किया, मुझे शमी महाराज जो थी, मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी कोई आर्टिस्ट थी।
कोयल, नायला,
और नहीं कोयल में तो नूरजहां थी, फिर उनकी एक फिल्म थी सीमा जिसमें एक गजल बड़ी मशहूर हुई थी शाम गम पे आ गई, उसमें आप देखिए वो उस दौर में एक नेगेटिव रोल था हीरोइन का, वरना उस दौर में कभी इस तरह के ग्रे शेड कैरेक्टर्स नहीं आते थे, और उन्होंने हमेशा मैंने देखा उन्होंने ग्रे शेड कैरेक्टर्स की, उन्होंने सहेली में भी जो कैरेक्टर किया वो ग्रे शेड था, तो मुझे वो लगता है उस लिहाज से मुझे लगता है उनका मैं काम देखता हूँ, वो मुझे लगता है जैसे इंडिया में नूतन थी उस दौर में कर रही थी, तो मुझे लगता है कि वो, मैं अगर कंपेरिजन करता हूँ तो मुझे नूतन और शमी महाराज बराबर बिल्कुल खड़ी नजर आती है, तो शमी महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी
मर्दों में
देखिए
नहीं, आपका ओरिएंटेशन हमें पता है, लेकिन फिर भी कोई मर्द एक्टर तो पसंद होगा ना?
मर्दों में है जैसे देखिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अलाउद्दीन साहब थे, उन्होंने करतार सिंह में बहुत अच्छा काम किया, सैफुद्दीन सैफ की जो फिल्म थी उन्होंने, मुझे आगा तलिश, मतलब अगर आप मुझे कहेंगे, मतलब जैसे मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, जैसे नीन फिल्म थी, नीला पर्वत थी, नीला पर्वत आपको पता होगा मुमताज मुफ्ती के अफसाने से उन्होंने उसको वो किया था, बशीर अहमद ने किया था, अहमद बशीर साहब ने, फिल्म नहीं चली थी, लेकिन आप सोचेंगे वो कहानी होती है कि एक 60 साल का जिसको एक 21 साल की लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो लड़की उसके दोस्त की बेटी है, तो उसके अंदर इतनी गिल्ट होती है कि उसको वो अपने पास उसके पास जाने से रोकने के लिए वो खुद को आतिशदान में जलाता है अपने हाथों को कि वो ना पहुंचे, लेकिन वो उसको उसकी मोहब्बत ऐसी होती है कि वो मतलब जिसे कहना चाहिए पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो वो बड़े अजीब अजीब से मौजूद थे, जैसे आगा तालिब साहब ने नींद में किया, उन्होंने वो नाबीना बने थे, और वो जो कोयले के उसमें काम कोयला चुनने वाली लड़की है नूरजहां, उसके वो बाप बने थे।
अच्छा, अब चूंकि मैं फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि मैं निज़ामत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की, मैं आपको मेरे पसंदीदा जो फनकार एक्टर हैं उनके भी मैं नाम बता दूं।
बिल्कुल बता,
और फिर हम उन पर कुछ कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। देखिए, मेरे जो पसंदीदा डायरेक्टर हैं वो परवेज़ मलिक हैं,
ठीक है,
और अरमान की वजह से,
ठीक है,
और पसंदीदा जो मेरे हीरो हैं वो वहीद मुराद हैं,
बिल्कुल,
और पसंदीदा मेरी जो हीरोइन है
ज़ेबा,
वो ज़ेबा। अब आप मुझे लुकमा दे रहे हैं, मुझे शबनम बहुत पसंद है।
शबनम की
यहाँ पसंद से मुराद फिल्मी पसंद।
अच्छा, शबनम ने मेरे एक सीरियल में भी काम किया ना, मैंने अभी जो बोल में किया था तो उसमें, हाँ, मोहिनी मेंशन की सिंड्रेला है, उसमें उन्होंने काम किया, तो वो उन्होंने पहला काम है उनका जो टीवी पे था, तो वो मेरा लिखा हुआ था।
बचपन में मुझे दीबा पसंद थी, अब शबनम पसंद।
दीबा, अच्छा दीबा भी, सॉरी यहाँ बात हो रही है, दीबा ने भी बड़े अच्छे अच्छे
बड़े अच्छे
बड़े अलग अलग कैरेक्टर्स।
जो सुल्तान रही साहब की बात थी वो किसी हीरो में नहीं थी। देखे आप सारी, आपको सोचना पड़ा कि कौन सा मेल कैरेक्टर पसंद था।
देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सुल्तान राही साहब की
विमेन सेंट्रेड फिल्में बनती थी ज्यादातर।
हाँ, इस पे हम आते हैं, जरा एक दो जरा थ्योरेटिकल सवाल भी करने हैं आपसे। सुल्तान राही के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात है, सुल्तान राही की आपके ख्याल में फंसी, सुल्तान राही इतने मकबूल क्यों कर हुए?
देखिए, सुल्तान राही का, जैसे बीगुल भी कह रही है, सुल्तान राही था एक अवामी चेहरा, एक आम चेहरा। देखिए, बात ये थी ना, हम कहते हैं कि फिल्में, जैसे उस जमाने में कहा जाता था कि फिल्में चलती हैं रिक्शा ड्राइवरों से, तांगे वालों से, उससे चलती हैं, जो उस दौर में जो आम फिल्में थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सुल्तान राही जो थे ना, वो एक आम किरदार थे। कभी हम देखें, हमारे तो हीरो का क्या तस्वुर होता था कि नीली नीली आँखें, संतोष की तरह खूबसूरत, या वहीद मुराद की तरह स्टाइलिश, बड़ा इंग्लिश मीडियम टाइप का एक वो ना। अब एक किरदार ऐसा आया, एक एक्टर ऐसा आया कि जो बिल्कुल, जिसकी नाक भी चपटी थी, जो बिल्कुल कोई इतना को गुड लुकिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या हुआ कि लोगों को क्या हुआ कि उस किरदार में लोगों को लगा अपना आप, जो एक हम कहते हैं ना, जो मासेस,
जिससे आप रेजोनेट करता जी, है।
और देखिए, सिनेमा हमेशा मासेस चलाते हैं, क्लास के उस दौर में भी वो लोग हॉलीवुड की फिल्में देख रहे थे, जो मासेस की, जो मैं आपकी आपको बात कर रहा हूँ ना, कि मासेस हमेशा उनको उसमें इंट्रैक्शन बड़ा वो लगता है, अट्रैक्शन लगता है कि जी उन्हीं के जैसा एक आदमी, उन्हीं के दुख सुख कर रहा है, उन्हीं की तरह उसको, जैसे अच्छा सुल्तान राही की जितनी भी फिल्में देख लें उसमें वही कोई ना कोई बेरोजगारी, कोई ना कोई मसले, बहन का जहेज, फलाना ढिमाका,
लोगों के मसाइल से,
लोगों के मसाइल।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि,
लेकिन उसमें एक चीज़ और है माजरत के साथ में, सुल्तान राही साहब हमारे मिस्टर डार्सी का एक देसी वर्जन थे, वो एक टिपिकल पेट्रियार्कल मेल थे, जो कि बहुत ही अलूफ रहते थे, हीरोइन से दूर रहते थे, बहुत अकड़ के मगरूर रहते थे,
लिफ्टी नहीं कराते थे हीरोइन को,
तो ठीक है अगर डार्के हैंडसम नहीं थे, हाँ तो क्यों नहीं,
ये भी वैसे, हाँ ये एंगल बड़ा मजे का है।
ये आप, अच्छा इसमें बड़ी दिलचस्प मुझे बात का ख्याल आया,
नहीं नहीं एंगल इनका बड़ा जबरदस्त मुझे लगा,
इनके एक एंगल है लेकिन इसमें एक और एंगल है। ये बात मैंने पहले भी कहीं किसी एक जगह कोई तकरीब थी या कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने सोची और फिर कही कि देखिए फिल्म ने या आर्ट ने अजीबोगरीब काम किए हैं। सुल्तान राही साहब को के बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है कि वो पाकिस्तान के मतलब एक माचो और अल्फा मेल पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं, जो मिस्टर डासी जैसे जैसे कहा बीगुल ने, और उनका ताल्लुक सहारनपुर से था, उनका
सहारनपुर से आया।
अच्छा, और दिलचस्प तरीन बात यह कि पंजाबी की जो पाकिस्तान में पहली फिल्म रिलीज हुई उसके हीरो संतोष कुमार थे, जो लखनऊ से आए थे। तो ये एक बहुत ही एक अजीबो गरीब बात है कि आर्ट में ये पॉसिबिलिटी है जो सियासत आपको फराहम नहीं करती, जो इन सब ये जो जिस किस्म के
सुल्तान भाई वैसे जब बोलते थे उनकी आप उर्दू का डिक्शन देखें, वो इतना अच्छा बोलते थे,
लेकिन पंजाबी का उनके तो लोग कॉपी करते हैं, उस तरह बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे तो बात के आने वाले बहुत से हीरो ने जो कि उनसे कहीं ज्यादा खुश शक्ल थे, सुल्तान राही बनने के चक्कर में पूरी पूरी जवानियां लुटा दी। लेकिन खैर, इसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता। अब हम जरा थोड़ा सा एक आध सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए पाकिस्तान में एक जमाने में 60 की दहाई या 70 की दहाई तक 70 फिल्में साल में रिलीज हो रही थी,
100 भी 77 में अगर देखें 70 से ऊपर
एवरेज कोई 70-80-100 फिल्में रिलीज हो रही थी। और इसमें एक दिलचस्प एक इसका जिमनी सवाल है, तो एकदम क्या हुआ फिर इंडस्ट्री को? और एक तो एक सवाल ये, दूसरा इसका जिमनी सवाल ये है कि पंजाबी सिंधी में भी कुछ फिल्में बनी लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं बन पाई। पंजाबी और पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का तो उरूज का जमाना है, यानी एक जमाना ये भी है कि पंजाबी फिल्मों से की जो तादाद थी पाकिस्तान में نمبرز کے حساب سے وہ اردو فلموں سے زیادہ پنجابی فلمیں
دیکھیں نا, پنجابی فلموں
فلمیں بھی بیسٹ. تو یہ کہاں گئی سب؟
دیکھیں پنجابی فلموں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, پنجابی فلموں کا میوزک میں کہتا ہوں جتنا میلوڈیس ہوتا تھا, جو جو ماسٹر عبداللہ نے دھنے کمپوز کیے ہیں, ماسٹر عبداللہ, وجاہت اترے, ذوالفقار, یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا آپ ان کا دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا خوبصورت میوزک ہو کیا. مطلب وہ فلمیں آپ دیکھ لیں, پرانی بھی اگر آپ دیکھیں, لاڈو دیکھیں, ناجی دیکھیں, کیا میوزک ہے.
مجھے ویسے فردوس بھی بہت پسند. ہاں
فردوس بھی بہت. ہیر رانجھا,
ہیر رانجھا میں کیا
ایک. اچھا نہیں
تو پنجابی, وہ تو آپ نے پنجابی فلموں کی میوزک کی تعریف کی ہے, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا نیکو گئیں کہاں, وہ 100 فلموں سے 5 کیسے ہو گئیں
بھائی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں,
اچھا وہ بھی ایک ڈرامے کی شکل کی فلمیں بن رہی ہیں.
ہاں نہیں دوسرے میں آپ کو دیکھیں, لاہور میں جو سینما ختم ہوا ہے نا, وہ لاہور کے اپنے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ نان پروفیشنلزم کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیے ڈراما بھی, حالانکہ آپ دیکھیں ایک زمانے میں کراچی سے بھی ڈراما ہوتا تھا لاہور سے, مجھے ہمیشہ لاہور کا ڈراما اچھا لگتا تھا اس لیے کہ لاہور کے رائٹرز بہت اچھے تھے, ڈیپتھ والا ڈراما ہوتا تھا. کراچی کا ٹپیکل اسٹیریو ٹائپ ڈراما لگی لگی اس طرح کا, وہ ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جو آرٹی چیز, جو بہت اچھی چیز پیش ہوئی ہے نا, وہ لاہور سے ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ میں کراچی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے لیکن میں 8 سال سے لاہور میں ہوں, میں دیکھتا ہوں جتنا ٹیلنٹ آپ کو لاہور میں نظر آتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا, میں اتنے ایکٹرز میں نے نئے ڈسکور کیے ہیں جو اتنے اچھے ہیں, اور جب آپ ان کو لے لیتے ہیں نا, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ کون ہے بہت اچھا. یہ وہ بچے ہیں بےچارے جو ان کے پاس گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی سین کروا لیں, ہم سے کچھ کروا لیں, یہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو لاہور میں جو یہ ساری جو تباہی بربادی آئی ہے نا, یہ نان پروفیشنلزم کی طرف.
تو آپ نے یہ بہت دلچسپ بات کی ہے فصی نے بیگل, کہ انہوں نے سارا الزام جنرل ضیاء الحق کے کھاتے میں نہیں ڈالا, اور یہ بڑی ریفریشنگ بات ہے میرے لیے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ان سے کیا رشتہ ہے, جنرل ضیاء الحق سے پورے خاندان کا ہی ہمارے کیا رشتہ ہے, لیکن انہوں نے یہ بہت ریفریشنگ بات کی کہ انہوں نے جو کمزوریاں ہماری ہوتی ہیں, جیسے میں میڈیا کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ سارا الزام آپ ریاست اور سیکورٹی ایجنسیز پہ ڈال دیں, اور 5-5 مہینے 10-10 مہینے آپ اپنے رپورٹرس کو, ایڈیٹرس کو تنخواہیں نہ دیں, اس کا الزام بھی انہیں پہ ڈال دیں, تو یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں معاملات. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو نان پروفیشنل ہونا ہے ہماری انڈسٹری کا, کیا محض یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک زمانے میں دنیا کی 10th largest فلم انڈسٹری تھی, اور اب میرا خیال ہے کہ کوئی 150 میں چلی گئی ہے کہیں.
دیکھیے ایک تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم دوبارہ سے ہمارا سینما جاگ اٹھا ہے,
ریوائیول آف سینما.
ریوائیول آف سینما نہیں ہے, دس از اے برتھ آف انٹائرلی نیو سینما, دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو میسز کا سینما تھا, جو آپ کی عام عوام دیکھتی تھی ایک سینما, وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو رہا ہی نہیں ہے.
تو نہ وہ فلمیں بنتی ہیں.
اب آپ کے سنیپلیکس, آپ ذرا اس کی ٹکٹ تو دیکھیے کتنے کی ہے, پاپ کارن دیکھیے کتنے کا آتا ہے, ڈرنک کتنے کی آتی ہے, فیول کتنے کا لگتا ہے. تو ایک اپر مڈل
کلاس. حارث اور میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ خیر الگ سے بہت کوئی ایسی بات نہیں, لیکن میں بتاؤں ہمارے ادھر جب جو فلمیں بنتی ہیں اس میں جو ہمارے سو کالڈ ایکٹرز ہیں, سپر اسٹارز ہیں, ہمایوں سعید فلانا وہ کر رہے ہوتے ہیں, مہوش حیات, آپ یہ دیکھیں ان کو لپ سنک کرنی نہیں آتی. جبکہ آپ پرانی کوئی بھی فلم اٹھا کے دیکھ لیں, جب کوئی ایکٹر گا رہا ہوتا تھا, چاہے وہ بہت ماٹھا ایکٹر ہوتا تھا, وہ لگتا تھا کہ جیسے وہی گا رہا ہے. وہ اسی طرح آپ دیکھیں اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی الفاظ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, گانا کہیں جا رہا ہوتا ہے, اور دوسری چیز, اور یہ بڑے بڑے آپ کے سپر اسٹارز کر رہے ہیں, مہوش حیات, ہمایوں سعید, اس ٹائپ کے سپر اسٹارز کر رہے ہیں آپ کے, کیونکہ ہے ہی نہیں نا. یہ ایک مذاق ہے, دیکھیں یہ جو آج کا سینما ہے مذاق. میں تو کہتا ہوں آپ بنائیں ریئلسٹک فلمیں جو آپ کا ایک مزاج ہے, ڈرامے گانے آپ کو رکھنے, آپ بیک گراؤنڈ میں رکھیں, آپ کیونکہ آپ کو کرنا ہی نہیں آتے, آپ کو پکچرائز ہی کرنے نہیں آتے, بات مان لیں آپ لوگ, تو اس سے بہتر ہے کہ. اور ویسے بھی اب ساری
مجھ سے اتنی شد و مد سے کہہ رہے ہیں جیسے ساری فلمیں میں ہی بنا رہا ہوں.
بالکل میں, آپ ہیں اس کے ذمہ دار.
لیکن میں چاہتی ہوں کہ خلیل الرحمان قمر پھر نکی جی ہاں بنائیں, اور پلیز بنائیں, اس لیے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو مل جائے نا ہم لوگوں کے لیے, ان کے لیے ایک سستا سینما ہو, ایک سکرین ہو جہاں وہ جا کے دیکھیں, اس سے آپ کی فلم انڈسٹری کو تقویت ملتی ہے. آپ کو یہ 4 elite cinema سے نہیں ملنے والا.
تو کراچی چلا گئی نا اب تو آپ کی. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ فصی کو کراچی سے لاہور منتقل کر دیا گیا, اور بیگل لاہور سے کراچی چلا گیا. خیر مطلب یہ کوئی کیا وجہ تھی کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یا مطلب اس کا کیا؟
میں آپ کو ایک بات ہوں, مجھے تو لاہور شروع سے اٹریکٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں لاہور سے اچھا دنیا میں کوئی شہر نہیں. جو لوگ پہلے میں کہتا تھا نا, لوگ کہتے تھے کہ لاہور یوں ہے لاہور یہ, میں یہاں رہا ہوں نا تو مجھے لگا کہ اس سے بہترین شہر دنیا میں کوئی نہیں ہے. کہیں سے آپ ہو کے آ جائیں, آپ کے اندر ایک کسک جاگے گی لاہور پہنچنے کی. और मेरे साथ हो गया जैसे मैं
अच्छा, इसमें तो फिर एक अलग प्रोग्राम
इसमें एक अलग होना चाहिए इसमें अलग होना चाहिए।
मेरा ये ख्याल है कि देखिए आपका सारा लिटरेचर तो पंजाब से निकला है ठीक है, तो एक डेप्थ एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ बाहर हाल यहाँ पर
बिल्कुल है,
मतलब अगर लाहौर नहीं तो पूरा पंजाब चलिए आप इसमें शामिल कीजिए,
पूरा पंजाब में फिर लाहौर में दब जाता है।
तो अब आपने उसको शिफ्ट कर दिया कराची और उसको कमर्शियल बनाने की कोशिश की। नाउ दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म जब आप इसकी बात करते हैं कि आपने ये तो सोचा ही नहीं कि जो चीज़ यहाँ से जिस डेप्थ से जिस चीज़ से निकल रही थी कोई ना कोई मकसद।
और बिल्कुल एक और चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं, जब कराची की फिल्मों में कोई पंजाबी कैरेक्टर दिखाते हैं और वो करवाते हैं वहीं के लोकल लोगों से, और जब वो जिस तरह की वो पंजाबी बोल रहा था ना, मैं कहता हूँ वो भी
कराची में तो मिलियंस में आप पंजाबी
लेकिन नहीं लेते ना, जब वो फिल्में बनाते हैं वो वही लेते हैं उर्दू स्पीकिंग एक्टर्स लेते हैं, और जब वो बोल रहे होते तो मतलब मैं कहता हूँ बड़ा हौसला है उसको सुनने के लिए।
अच्छा लेकिन ये बताएं कि ये आपके जो अच्छे प्लेयर्स हैं, कराची के डिफेंस में भी एक बात हो जाए, डिफेंस ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बात नहीं, कराची के दिफा में उसमें आपके तो सारे प्लेयर्स जिन्होंने आप जिन्हें बाम शोहरत पे पहुंचे आप, तो वो तो सब कराची में सेट हैं।
हाँ लेकिन अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं समझता मैं लाहौर नहीं आता तो मुझे लगता है कि मुझे एक नई डायमेंशन मिली है, मैंने अब लाहौर में जो काम किया है जो मैं अपना काम कर रहा हूँ शायद मैं कराची में होता मैं नहीं कर पाता उस तरह का, मुझे लगा मैं एक अलग शहर में, मैंने मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाइन लिखा तो वो मुझे लगा कि जब मैं इधर आया हूँ लाहौर तो मुझे लाहौर का प्ले लिखना चाहिए। लाहौर मैं आता जाता रहा हूँ क्योंकि मेरे मामू यहाँ थे तो मेरा बहुत आना जाना भी लगा रहता था, मैं अंदरून भी बहुत रहा हूँ इधर भी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जिस जगह आप आए तो आपको उस जगह का फ्लेवर लाना चाहिए अपनी तहरीर में। मैं अब सारी ज़िंदगी अगर कुद्दूसी साहब की बेवा लिखता रहा हूँ तो ये इसका मतलब है कि मैं एक नाकाम राइटर हूँ, कि मैं एक ही उसमें अपने अटक के रह गया, तो मुझे लगता है कि मंजिलें और।
लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर के भी बाद राइटर्स ऐसे हैं जो अंदरून शहर लाहौर से नहीं निकलते, मिसाल के तौर पर अब खैर मैं बुज़ुर्ग हैं मेरे तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो उससे नहीं निकलते, तो ये तो शायद आपकी चॉइस पे होता है कि आप किस तरह से करें। लेकिन बहरहाल एक बात मुझे बिल्कुल ये बताइए, इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाएं कि भाई पाकिस्तान में लाहौर और कराची के अलावा भी तो बहुत शहर हैं, तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पख्तूनख्वा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बलूचिस्तान जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो ये जो एक ऑब्सेशन है दो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स का आठ में, और ये मैं जो हमने शुरू में बात की थी और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मतलब ये सारा का सारा मामला जो है कि आपका जो पाकिस्तान टेलीविजन का आपका अब मैं उस दिन देख रहा था कि एक पश्तो का एक चैनल है उस पे उर्दू के प्लेयर्स डब होके चल रहे हैं।
जी।
अच्छा अब ये तो बहुत ही मुझे मेरे लिए कोई बुराई नहीं है क्योंकि मुझे लगता ये है कि बेशतर लोग जो पख्तूनख्वा में जो टेलीविजन देखते हैं वो उर्दू का प्ले भी देख के समझ सकते हैं, तो शायद आप अफगानिस्तान में तो दिखाया ही नहीं जा सकता आपका प्ले, मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है, तो आप वो उसी को डब क्योंकि पश्तो में प्लेज नहीं बन रहे, बलोची में प्लेज नहीं बन रहे, ब्राह्मी में, सिंधी में, सरायकी में, पंजाबी हमारे और बेशुमार हिंदकों में प्लेयर्स बनते थे, मुशायरे गुजराती और हिंदकों में मैंने सुने हैं बचपन में पीटी, तो इसको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि ये जो सारा का सारा मसला है और हमारी गुफ्तगू भी उसी समत में चली गई क्योंकि हम सब का भी जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो इन्हीं दोनों शहरों से ताल्लुक है, तो ये किस तरह से मतलब ये वापस लाया जाए और इसको कैसे तोड़ा जाए क्योंकि पीटीवी का ये तो बहुत कंट्रीब्यूशन है और फिल्मों में का भी है, फिल्मों में भी हर जगह के किरदार थे।
फिल्मों में हर जगह देखिए टेलीविजन कराची को मैं बहुत इसलिए भी देखिए उसकी जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि बहुत एंटरप्राइजिंग एक शहर है ना, उसमें एक एथनिक मिक्स आपको नजर आता है, उसमें आपको एक टॉलरेंट एथनिक मिक्स नज़र आता है, आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन आपको वो कहानियाँ नज़र नहीं आती, आप तो पारसियों की कहानियाँ नहीं देखते, आप तो किसी माइनॉरिटी की कहानी टेलीविजन के ऊपर नहीं देखते, जबकि
कराची में बहुत है, कराची में बहुत बिल्कुल
कराची के पास इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो वो तो हमें नज़र नहीं आती कहीं। उसके अलावा आप जैसे मुझे सरायकी की कोई चीज़ नज़र नहीं आती जबकि सरायकी लिटरेचर के अंदर या खारे साहब बेहतर जानते हैं कि सरायकी पोइट्री पर कितना काम हो रहा है, ठीक है, और आपके बलूचिस्तान में कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ है, कितनी कहानियां हैं जो कितनी जबानें हैं,
कितनी कहानियां हैं, बिल्कुल
हफ्त जी हफ्त जबान, सात जबानें, सात कल्चर्स आबाद हैं जो साथ साथ रहते हैं, वो एक शख्स सात जबानें बोल सकता है, तो उस चीज को तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो काम पाकिस्तान टेलीविजन का था, देखिए वो स्टेट ओन्ड एक चैनल का काम था, वो प्राइवेट चैनल्स का काम नहीं था, वो प्राइवेट चैनल्स तो इस चीज में
रीजनल आपने खत्म कर दिया ना, जितने भी ड्रामे होते थे
पाकिस्तान टेलीविजन का रिवाइवल और उसकी एंटरटेनमेंट का जो रिवाइवल है बड़ा जरूरी। अच्छा एक इसको जरा सा चूंकि ہمیں ذرا وقت کی ظاہر ہے کہ کمی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بیگل نے شروع میں ان کو یہ پرووک کرنے کا تو بہت شوق ہے نا، تو یہ انہوں نے ایک بہت ہی پرووکیٹیو بات کی تھی کہ ٹیلی ویژن کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اچھا وہاں ایسے، اور میں ان کی بات سمجھ سکتا ہوں، حالانکہ ٹیلی ویژن تو ایک میڈیم ہے، مطلب میں اپنے فون پہ بھی میں
لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہی تھی جو آپ مجھے کرنے نہیں دی، وہ یہ تھی کہ ٹیلی ویژن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ٹیلی ویژن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تقریباً 60% لوگوں کے گھر میں ٹیلی ویژن۔
اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں نا اس بات سے، ویب چینلز کا کیا وہ ہے فیوچر، مطلب کوئی ویب ٹی وی جو ہے یا جو آپ کا جس کو کیا آپ کہتے ہیں اوور دا ٹیوب،
اوور
دا ٹاپ، دیکھے نا وہ مجھے یوٹیوب کی وجہ سے ملا دیا، تو او ٹی ٹی، تو آپ یہ جو اگر ہیں آپ کے ویب کے جو چینلز ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھیے نا انہوں نے آپ کے دوسری بات کہ آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا، اچھا وہ ایک علیحدہ سوال ہے، پہلے اس کا جواب دیں۔
اچھا دیکھیے میں ایک بات بتاؤں ویب کا کیا ہے، کیونکہ میں نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی جو انسان کے لیے وہ ہوتی ہے نا، مطلب نعمت ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ آپ کھلے دماغ کے ساتھ، آپ کی سوچ پہ کوئی امپوز نہ ہو، آپ اپنی بات کہہ سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو مجھے کوئی کہے گا نا کہ او ٹی ٹی کا کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے میں جب لکھ رہا ہوتا ہوں او ٹی ٹی کے لیے، مجھے یہ نہیں ہوتا یار یہ جملہ میں لکھوں گا تو یہ ہو جائے گا، جیسے ہم کانٹینٹ میں دیتے نا، کوئی بھی بات ہو، کبھی کسی حوالے سے اگر ہم کر دیں، کوئی سیاسی بات کر دیں، کچھ نہیں جی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا بینیفٹ ایک رائٹر کے طور پہ، کیونکہ ایک رائٹر ہمیشہ ایک کریٹو لبرٹی چاہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے مجھے پتا ہے اس میں پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں، ابھی فی الوقت اتنے زیادہ نہیں ہیں، آئیں گے لیکن اس میں پیسے، اور لوگ آئیں گے اس طرف، یہی جتنے لوگ ہیں 2-4 سال بعد سب اس میں آئیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر جو ایک ہمیشہ سے ایک سفوکیشن تھی کہ جی
اچھا تو ڈیموکریٹائز کر دیا اس نے،
ہاں جی اس نے کر دیا نا
دیکھیے اسپیس کو،
جی
پوری آڈیو ویژول،
یعنی میرا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی سوچ کو کی جو حد مقرر تھی وہ کھل گئی اور آپ سے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنی کنزرویٹو سوچ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر او ٹی ٹی پہ جا رہے ہیں تو گالم گلوچ شروع کر
دیں،
آپ ایسی بکواس شروع کر دیں کہ شاید آپ یہ نہیں کہہ سکتے، پھر بھی آپ کی سوچ اتنی محدود ہے کہ آپ کو جو قدغن یہاں لگی ہوئی ہے وہ کھلی ہوئی بات تو کہہ سکتے۔
بھائی دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب ہمارے تو یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں، مطلب میں تو بہت گندی گندی گالیاں دیتا ہوں، تو بات یہ کہ
ہم دونوں حصہ رہے ہیں،
ہاں میں نے کہا وہ ایک توجہ نوٹس جاری کر دوں، ہاں
وہ تو چلیں وہ ہم ان کو بھی وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ ہیں جو ہماری بات نہیں سمجھتے، تو بات یہ کہ ویب میں بھی وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ باہر کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی جتنا ہم گالیاں بکیں گے جتنا ہم وہ کریں گے تو وہ ہوگا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں موضوعات کی ہمیں اس چیز کو لینا چاہیے موضوعات کی آزادی کے طور پہ، کہ وہ موضوعات جن کے بارے میں ہم ٹی وی پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے موضوع کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹی وی کی آڈینس ایسی ہے وہ نہیں دیکھیں گے، ہم موضوعات کی آزادی کو کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے آج کل،
یہی میں کہہ رہا ہوں،
نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت فیوچر ہے ویب کا،
مجھے تو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے آنے والا،
مگر مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ویب کا فیوچر، میرا خیال ہے میڈیم ایک طرح سے ایک نیا میڈیم ہے، اس کے نئے تقاضے اور اس کی ایک نئی پوری شکل ہے۔ ایک سوال اور، کیونکہ وقت ہم نے کافی لے لیا آپ دونوں کا، ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا جو ایک طرح سے مستقبل سے متعلق ہے اور سینسرشپ سے متعلق ہے، چونکہ دیکھیے صحافت میں تو ہم نے سینسرشپ پہ بہت بات کی ہے، ادب میں بھی سینسرشپ پہ ہم نے بہت بات کی ہے، پاکستان میں میں یعنی اپنے پوڈ کاسٹ کی بات نہیں کر رہا، ویسے عمومی طور پہ پاکستان میں بہت بات ہوتی ہے، لیکن فلم پہ اور جو ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اس کی سینسرشپ پہ اس طرح سے گفتگو نہیں منظر عام پر آتی، اور شاید کچھ کمرشل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ والد کا تعلق دستاویزی فلمیں بنانے سے تھا تو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کی کتنی دستاویزی فلمیں کب سینسر ہوئیں اور ان کو کس قسم کا عتاب سہنا پڑا، لیکن وہ چونکہ کمرشل معاملہ نہیں تھا تو سب کو پتہ ہے، اس کے بارے میں لکھ بھی دیا گیا، وہ خود بھی بات کرتے تھے، اب جو کمرشل معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا فلم اور ٹیلی ویژن کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لکھنے والے ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں یا پروڈیوسرز ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا کچھ پش بیک دیتے ہیں سرکار کو کہ
देखिए मैं आपको बताऊँ, फिल्म का जहाँ तक मामला है ना, फिल्म में कुछ अर्से पहले तक लोग नहीं बोलते थे। फिल्म में हमें होता था टीवी पे जो चीज़ नहीं है, चलो फिल्म में इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन अब मसला है कि आपके हर जगह आपकी जो फौज है वो आ जाती है, खड़ी हो जाती है। मतलब आप आपके सेंसर भी अगर हो रहा है तो उसमें भी फौज बैठी हुई है। मतलब एक बात बताएं कि एक मतलब एक डायरेक्टर है जो अपना मतलब उसको लगता है कि यार मुझे टीवी पे भी नहीं काम करने दे रहे, यहाँ भी ये काम नहीं करने दे रहे, फिल्म मेरे लिए एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें मैं अपनी बात कह सकता हूँ और ये कुछ
बड़ा कैनवस है।
हाँ जी बड़ा कैनवस है, लेकिन मसला क्या होता है कि जी या अब वो हो जाते हैं इन्वॉल्व, फौज हो जाती है, फिर ये होता है कि जी सेंसर बोर्ड में आप मौलवियों को बिठा देते हैं कि जी वो फिल्म का फैसला करेंगे। तो यार ये मैं कहता हूँ मतलब इससे बुरी सिचुएशन किसी मुल्क के लिए हो ही नहीं सकती,
सिर्फ फिल्म में नहीं है, टेलीविजन के ऊपर भी।
हाँ सब जगह नहीं, फिल्म में तो बाकायदा जैसे एक फिल्म है जिसके वो सरमत खुसट की थी जिंदगी तमाशा, उसको बाकायदा एक पैनल उन्होंने बिठा दिया मौलवियों का कि उन्होंने कहा कि वो देखेंगे फिर वो फैसला करेंगे कि इसमें
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उन्होंने इन्वोक कर दिया था।
तो यही मैं फौज का क्या ताल्लुक, जब मतलब मैं कहता हूँ हर जगह फौज आपकी आएगी तो यही होगा ना, इसी तरह होगा कि जब जाहिर सी बात है क्रिएशन का तो यही हशर होगा जो के मुल्क में एक मुर्दा है जो पड़ा हुआ है।
नहीं लेकिन देखिए हाँ। इसमें बीगुल इसमें मैं आपसे पूछूंगा आपकी राय क्या है, क्योंकि देखिए फौज के तो अपने मतलब फौज की तो पूरी फौज की तो क्या बात, लेकिन जो हमारा ISPR है जो फौज का ताल्लुकात आम्मा का शोभा है वो तो बड़ी मतलब उन्होंने तो फिल्में बनाई हैं और गाने बनवाए हैं।
उन्होंने क्या फिल्में बनाई हैं, उन्होंने कचरा बनाया है,
सब उन्होंने बनाई,
उन्होंने कचरा बनाया, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने फिल्में तो नहीं सिर्फ कचरा उन्होंने प्रोड्यूस किया।
बीगुल आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
देखिए वो अब फौज का क्या काम है यहाँ पर फिल्म बनाने का, मतलब फौज इज नॉट ट्रेन्ड टू मेक फिल्म्स, ठीक है?
नहीं नहीं वो तो हायर करते हैं ना भाई, आपको बुला लेंगे कि आप लिख दें, फसी को कहेंगे डायरेक्ट कर दें, वो तो हायर करते हैं। तो
यार देखिए एक बात बताओ, नसीम इजाजी के नॉवल होते थे ना, नसीम इजाजी के नॉवल होते थे, उसमें क्या था, एक मुसलमान सिपे सालार होता था, बड़ा वजी होता था, और हर गैर मुल्की क्या गैर मुस्लिम लड़की को उनसे मोहब्बत हो जाती थी, फिर वो उनके इश्क में मर जाती थी,
उनके लिए
हाँ मुसलमान हो जाती।
लेकिन अब वो नॉवल्स लिखे जाते हैं और वो हमारी खवातीन लिखती हैं जिसमें उनको एक कप्तान से मोहब्बत हो जाती है। एनीवे दैट इज इररिलेवेंट मे बी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लव सेंसर को ही सेंसर कर देना चाहिए, बैन को ही बैन,
खुदा करे हो जाए, खुदा करे हो जाए।
मेरा ख्याल है कि इस तारीखी जुमले पर और इस ख्वाहिश के
लव सेंसर
जो हम सबके दिलों में है, और मैं समझता हूँ कि ये यानी ये तो महज लाइटर नोट पे बात नहीं है, ये एक बहुत संजीदा मसला है। सामईन कोई समाज, कोई मुल्क, कोई रियासत सेहतमंद नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती, न इल्मी और फिक्री तौर पर, न जज्बाती तौर पर, अगर उसमें पाबंदियां लगाई जाएं। ये बात अपनी जगह, लेकिन अब मैं फसी बारी खान साहब और बीगुल साहिबा का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और पाकिस्तान में फिल्म और टेलीविज़न की जो 75 बरस की तारीख है उसके भी कुछ हवाले हमारे सामने आए। ज़ाहिर है सबके नाम नहीं लिए जा सकते, बहुत बड़े बड़े नाम रह गए, फिल्मी मौसीकी पे बात नहीं हो सकी, फिल्म के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो कैमरे के पीछे लोग होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, हमें वो
इसमें एक निश्चित तौर होनी चाहिए,
बिल्कुल होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप दोनों का बेइंतहा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ ख़वातीन,
खुदा हाफिज़।
इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगू शुरका की जाती राय पर मबनी है, वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।
पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल के इस मौके पर VOA उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनवों के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ते नजर और फिक्र अंगेज ख्याल। इस तारीखी मौके पर VOA उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे फिक्र फलसफे की तारीख पर।